ये सारी चीज हमें प्रायोगिक रूप से अपनी साधना में भगवान के नाम द्वारा प्राप्त होती है। हाँ? नाम, रूप, गुण और लीला, ऐसे इस क्रम में हमारी भक्ति का विकास होना चाहिए। यानी कि भगवान की अनुभूति करने के लिए नाम, रूप, गुण और लीला। लेकिन नाम यदि शुद्ध न हो तो रूप भी कैसा निकलेगा, रूप की भावना नहीं आएगी। जो नाम की सेवा करता है, नाम की सेवा कैसे की जाती है, जप,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
के नाम सेवा, सेवन मुखे ही जिह्वा दौ स्वयं स्फुरत्यमेव अद्या। भगवान अपने आप प्रकट करेंगे, लेकिन चालू करो भगवान के नाम की सेवा मुख से। हाँ, वो प्रसाद पाने से, वो भी मुख की सेवा है, जिह्वा दौ, जिह्वा की सेवा। तो जब नाम द्वारा भगवान का परिचय की संभावना तब होती है जब हम शुद्ध नाम लेते हैं, तब तो स्वरूप प्रकट होता है। नाम के बाद स्वरूप प्रकट होता है, लेकिन नाम की शुद्धता तो होनी चाहिए, नहीं तो स्वरूप भी ऐसे वैसे काम चलाओ प्रकट होगा और हम उस पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये चंचल मन वाला जो स्वरूप निकलता है तो स्वरूप भी चंचल बनेगा। तीसरा बताएं, जो नाम की सेवा कर रहा है, जो साथ साथ में स्वरूप की भी सेवा कर रहा है, तो अवश्य उसमें दिव्य गुण प्राप्त होंगे। तो भगवान का परिचय नाम, रूप और गुण के साथ होना चाहिए। स्वरूप की सेवा करते ही हमें, हमारे में दिव्यता प्रकट होती है। भगवान दिव्य है तो भगवान का अंश भी दिव्य होना चाहिए, ये तो रोकड़ा हिसाब है। लेकिन हम पता नहीं क्या करते हैं, पागल की तरह हम अपने आप को ही ठुकराते हैं, अपनी असलियत को ठुकराते हैं, हम नकली जीवन पसंद करते हैं। नकली जीवन में दूसरों का अनुकरण करते हैं, और वो भी सामान्य मनुष्य। वो कौन सी फिल्म थी, उसमें एक व्यक्ति जो पता नहीं, हम तो नाम तो जानते हैं, लेकिन उसने दाढ़ी और मूछ रखनी शुरू करी। आज सब जगह इंडिया में दाढ़ी मूछ रखने लगे सब जवान बच्चे। उन्होंने बोला क्या है, ये अनुकरण है, ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करो जो दिव्यता हमें दिलाए। तो नाम, रूप, गुण, ये तीनों का समावेश, और इनके तीनों के साथ साथ में जब सेवा होती है, दिव्य गुण द्वारा सेवा करनी है, तो सेवा के अर्थ के लिए ही सारी वस्तु उपस्थित होती है, तो तब हमें लीला का परिचय होता है, अंत में लीला का परिचय होता है। अभी यहां अर्जुन कौन से स्तर पे बात कर रहा है, भगवान ने अपनी दिव्यता के बारे में नौवें अध्याय में बता दिया। हाँ, उनकी सर्वोपरिता है। दसवें अध्याय में भी शुरुआत वहां से कर रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो अर्जुन धीरे धीरे विकास कर रहा है। भगवान ने अपनी महत्ता, अपनी सत्ता, परम सत्ता वाचक ये शब्द बोले हैं कि मैं ही सबका उद्गम हूं। और बाद में दसवें अध्याय में अर्जुन ने थोड़ी जानकारी के लिए इच्छा बताई कि भगवान आप ही सब कुछ हो, तो आप इस भौतिक जगत में कहाँ कहाँ हो, कैसे व्याप्त हो, मैं आपको किस तरह पहचान पाऊं। हाँ, तब भगवान कहे कि ये तो मेरी विभूतियां हैं। हाँ, विभू की शक्ति जब प्रकट होती है तो विभूति होती है। तो ये शक्ति का प्रकटीकरण, तो भगवान के कि इसको देखकर भी तुझे याद आना चाहिए। जब भगवान ने कहा पांडवा नाम धनंजय, सारे पांडव में धनंजय के अर्जुन में हूं, तो अर्जुन के दिमाग में क्या चला होगा? गड़बड़ी समझो, क्योंकि ये भगवान स्वयं में कैसे हो सकता है? मैं तो अलग हूं, भगवान अलग है, पर लेकिन ये एक परम सत्य, जब भगवान कहते हैं तो उसको साबित करते बताते हैं, वो पद्धति विशुद्ध भक्ति में आती है। और बच्चों ने तूने गाया ना कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म ईश्वरे। एवात्मा, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के बारे में, लेकिन ईश्वर को अपने जैसे ही देखता है, लेकिन ये ईश्वर परम कंट्रोलर है। तो जो भगवान का साक्षात्कार करने वाला विनम्रता से नहीं देखेगा तो क्या करेगा? मायावादी बन जाएगा। वो कहेगा कि मेरे में और भगवान में का अंतर है ही नहीं, मैं ही परमात्मा, आत्मा स्व परमात्मा करके खड़े हो जाएंगे और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। भगवत गीता का रहस्य आत्मा स्व परमात्मा ना, ये झूठी गलत बात है। तो परमात्मा इतने छोटे भी बन सकते हैं कि आत्मा को उस समय चक्रावे में डाल देते हैं कि इसके हृदय में कौन बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भूत यानी हम ये शरीरधारी जीवात्मा भूत कहलाते हैं, उसका उद्गम होता है। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर चालू, इसलिए भी भूत कहलाते हैं, और भविष्य में भी भूत बनेंगे। तो अर्जुन तो सीधा चौंके उठता है कि भगवान आप सब कुछ आप अपने आप को बताते हैं, तो मैं आपको एक ही स्थल पर एक ही व्यक्तित्व में ये सब कैसे देख पाऊं? वो तो रथ पे खड़े हैं, भगवान भी रथ पे खड़े हैं, है? तो उसको कैसे देख पाए? तो अभी देखो, अभी क्या कह रहे हैं भगवान। आज का श्लोक ये है, आठवां श्लोक, ग्यारहवां अध्याय निकाला सबने? न तु माम सक्ष्यसे,
न तु माम सक्ष्यसे
द्रष्टुमनैव स्वचक्षुषा,
द्रष्टुमनैव स्वचक्षुषा
दिव्यं ददामि ते चक्षु,
दिव्यं ददामि ते चक्षु
पश्य मे योगमेश्वरम्,
पश्य मे योगमेश्वरम्
न तु माम सक्ष्यसे द्रष्टुम्,
न तु माम सक्ष्यसे द्रष्टुम्
अनेनैव स्वचक्षुषा,
अनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यं ददामि ते चक्षु,
दिव्यं ददामि ते चक्षु
पश्य मे योगमेश्वरम्,
पश्य मे योगमेश्वरम्
न तु माम सक्ष्यसे द्रष्टुम्,
न तु माम सक्ष्यसे द्रष्टुम्
अनेनैव स्वचक्षुषा,
अनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यं ददामि ते चक्षुः,
दिव्यं ददामि ते चक्षुः
पश्य मे योगमैश्वरम्,
पश्य मे योगमैश्वरम्।
सीधे ही चले, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुज रूपी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चलेगा। फिर भी क्योंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते थे कि वे भूल जाते थे कि कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजुः कृतपुण्यपुञ्जः। यह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से ये अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अभी तो साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों का अनुकरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चतुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीक्षाकान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तत्कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
న తు మాం సక్షసి ద్రష్టుమనేన స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్చిమే యోగమేశ్వర. సో అర్జున్ కో ఈ చర్మ చక్షు ద్వారా ఏ రూప్ నహీ దిఖాయి దేగా. ఉస్కి పాస్ భగవాన్ విషయ జ్ఞాన హై ఔర్ భగవాన్ కో యథార్థ రూప్ మే దశమే హీ అధ్యాయ మే వో స్వీకారతా హై. లేకిన్ స్వీకారనే కే పీచే ఉస్నే అప్ని జో ఆచార్యో కి అనుమతి అనుసార స్వీకారా హై. గురు సాధు శాస్త్ర కా సిద్ధాంత ఉస్నే స్థాపిత కియా హై వహాన్ తభీ తో బోల్ సక్తా హై కే పరం బ్రహ్మ పరం ధామం పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభోం ఆహుస్త్వాం సర్వఋషయ దేవర్షి నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసో స్వయం చైవ ప్రవిశి మే సర్వమేతద్రుతం మన్యే యన్మాన్ వదసి కేశవ నహి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్ దేవాన దానవ. ఏ కితనా భారీ అనుభవ బతా దియా ఉస్నే. బాద మే కే స్వయం ఏక బాత్మా आप अपने आप को ही जान सकते हैं, आपके दूसरे यत्किंचित जानते हैं. पर लेकिन यत्किंचित जानना क्वालिटेटिव वननेस वाला तो होता ही है. हम भगवान को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते. इनका कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में लीला है जब होती रहती है तो भगवान को पता नहीं कि कौन सी लीला होगी. वो भी नहीं जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं. फिर भी भगवान की शक्तियां अपने आप जब काम करती हैं तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स भगवान को देना पड़ता है. वृंदा देवी देखो, पूर्णमासी देखो, ये सबका काम क्या है, एग्जैक्टली सेटअप करना है, सब स्टेज बिछा देना होता है, सारी पूर्व योजित योजना भी बना देनी है. भगवान सिंह आकर बहुत स्वाभाविक अपना लीला करें, उसको अनुकूल वातावरण के अनुसार भी ये लोग जब सेटअप करते हैं तो उसी लीला में प्रवेश होना होता है. तब भगवान स्वयं नहीं जानते मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप. वो तो भगवान की शक्तियां जो हैं इस तरह विस्तार किया है और विविधताएं प्रकट करने के लिए. तो भगवान आध्यात्मिक है और इनकी शक्तियां अनेक हैं. तो शक्तियों के माध्यम द्वारा सबके पास पहुंच भी सकते हैं, सबको जान भी सकते हैं. तो खुद को भी जाने ऐसी हम भावना रखते हैं, लेकिन अंतरंग लीलाओं में, अंतरंग लीलाओं में भगवान भी ऐसी रागनुग भक्ति में पड़े हैं. तो यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भगवान को देखना तो दूर की बात है, सही. हम काफी पुण्य करें फिर भी यदि भगवान को समझ नहीं पाए तो देखने की तो बात ही छोड़ो. तो इसीलिए ये जो भगवान प्रभुपाद जो पद्धति लाए हैं, जो ये वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार बहुत चकासी हुई पद्धति है. पद्धति इतनी परफेक्ट है कि इस तरह हम विकास कर सकते हैं और अनुभूति कर सकते हैं. प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम गंतुम अव्ययम तब भगवान जब ऐसे अति गुह्य बातें जब कहते हैं तो गुह्य बातें में भी गुह्यता की हद नहीं होती। तो इसी तरह जब भक्त रागानुग भक्ति में प्रवेशता नहीं तब तक उसको बहुत मर्यादा में रहना पड़ता है। और वहां भी रागानुग भक्ति में तो अमर्यादित किसी प्रकार का बंधन नहीं है, साधना भक्ति का भी बंधन नहीं है। तो वहां कैसे पहुंच सकता है? वो तो अंतरंग भक्त पहुंच सकते हैं। इसीलिए भगवान अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ अंतरंग भक्त आते हैं और अंतरंग लीलाओं में जब वो भी प्रवेश होते हैं तो भगवान का सिर्फ मनोभाव ही नहीं जानते बल्कि इनकी ये अद्भुत जो स्थिति है अद्वितीय अद्वितीय स्थिति है कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और न तो इसका कोई ऊपरी हो सकता है। न च तस्य कारणम करणम च विद्यते न च समासम अभी अधिकच्च दृश्यते पराश शक्तिर विविधि श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान होना एक व्यक्ति विशेष को लागू होता है, अदृश्य को लागू नहीं होता है, निर्गुण निराकारी को लागू नहीं होता है। तो इनकी चर्चा भी नहीं हो सकती, भगवान की लीला तो इन लोगों के दिमाग में जाती ही नहीं। तो सामान्य मनुष्य ऐसी चेष्टा करता है, जो अति मानवीय है वो भी चेष्टा इन लोगों के लिए तो इनके मानवीय लगती है, तो इनकी बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ है। दुष्ट बुद्धि से वो जो सारी जो भावना है वो पवित्र भावनाओं को भी गला रूंधता। ऐसे निकृष्ट मायावादी या निर्विशेष शून्यवादी ये सब भगवान के द्वेषी रहते हैं। तो ये अंतरंग लीला कैसे बता सकते? अर्जुन के साथ भगवान का विश्वरूप देखने की जो ये लीला ही है, तो ये विश्वरूप को देखने के लिए अर्जुन के तो छक्के छूट जाते हैं। विश्वरूप का दर्शन के लिए भी अपनी चमड़ी की आंखों से नहीं देख पाएंगे, दिव्य चक्षु की आवश्यकता बताएंगे। दिव्य चक्षु क्या होते हैं भाई? कोई उसे तीसरी आंख भी कहता है, नहीं सही है? शिव जी, दुर्गा माता, गणेश सबको तीन तीन आंख, इन लोगों के ब्रह्मा को क्यों नहीं? ब्रह्मा जीव है, जीव को तीन आंख नहीं होती, लेकिन जो शिव तत्व होते हैं, शक्ति तत्व होता है, इनको होती है, पर ये अध्यात्म की आंख होती है। उसको देखने के लिए या इसका विकास करने के लिए कड़ी साधना की आवश्यकता है। और कोई भी युग में हो, अंत में तो हरि नाम ही आता है। तपश्चर्या हो, यज्ञ हो, के दान की विधि तीन तीन युगों में प्रामाणिक रूप से पवित्र बनाने के लिए है, पर फिर भी आवश्यकता तो भगवान के नाम पर ही है। इसीलिए शिव जी हाथ में माला लेकर घूमते हैं, पार्वती के हाथ में भी माला, गणेश के हाथ में भी माला है, ब्रह्मा भी माला पकड़े हैं, जीव तत्व तो है फिर भी, तो हम क्यों नहीं पकड़े भाई? किसी ने माला नहीं पकड़ी है? यहाँ सबने पकड़ी है ना? बहुत बढ़िया, आप जैसे सद्भागी कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के बारे में सुनते हैं लेकिन कितना समझते हैं? ये कान में गया, दूसरे कान में से निकल गया है। ये लड़की सोच रही है तो सोचती है ना, यहां से अंदर जाता है, नहीं सुनना ऐसा होता है कि यहां से अंदर जा रहा है। ऐसा कपिल मुनि देवहूति को बताते हैं। भवंति रद कर्ण रसायन कथा, हृदय और कान में संचार करे ऐसे भगवान के ये वाणी है। हाँ, तो वो संचार हम क्यों नहीं होने देते, क्योंकि बहुत सारे अंतराय पड़े हैं, चट्टाने पड़ी हैं, अहंकार पड़ा है, वो नहीं होने देते। पढ़े लिखे के तो होते ही नहीं, वो तो समझ के चलो मैं सोचूंगा, यहाँ तक रखते हैं। बाद में के अरे ये तो कोई समझने की बात ही नहीं है, साइंस जानो बहुत बड़ा, साइंस ही भगवान है। अभी साइंस के भी छक्के छोड़ रहे हैं, भगवान कहाँ। जो भी है, यहाँ भगवान को देखने की बात है, भगवान के कोई स्वरूप की देखने की। तो ये काम चलाओ स्वरूप है भाई, एक जगह पर एक ही व्यक्तित्व में ये सारी विभूतियों का दर्शन करना है, उसके लिए भी दिव्य चक्षु चाहिए। ये काम चलाओ रूप है और भौतिक रूप है, आध्यात्मिक भी नहीं है, बोलो। भौतिक रूप है, जो सर्वमिदं खल्वं ब्रह्म वेद किया क्या है, तो ये ब्रह्म क्या चीज है जो सब कुछ है। तो बताते हैं कि चित और अचित कण दोनों ब्रह्म से निकलते हैं, जीव भी चित शक्ति लेकर ब्रह्म की पैदाश है, और अचित कण जो यानी कि निर्जीव है वो भी ब्रह्म की पैदाश है। साइंस में है कोई? साइंस पढ़ने वाले हैं, आ तो क्या करो थोड़ा, ना ऐसा हो ही नहीं सकता। चित कण यानी कि कॉन्शियस पार्टिकल, बट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑल अराउंड अस इज अनकॉन्शियस, दे डोंट हैव चेतना नहीं है। इसमें चेतना नहीं, इसमें चेतना नहीं, इसमें चेतना नहीं है। चेतना आप में है, मेरे में है, तो चेतना वाला जो अंश है उसे आत्मा कहते हैं, वो भगवान के तक तो मेरा अंश है। और अचित कण भी भगवान की ये शक्ति का प्रण, कि जिसके हृदय में से जो चेतना चली जाती है वो पत्थर बन जाता है, ये कण पार्थिव बन जाता है, निर्जीव होता है। लेकिन चेतना तो आत्मा का अविभाज्य अंग बताया है, लेकिन जैसे चेतना को हम रूंते हैं तो हम निपट मायावादी भी बन सकते हैं, निपट राक्षस भी बन सकते हैं, जो भगवान के विरोधी कहलाते हैं। तो चेतना को कभी रूंना, उनका विकास ही करना होता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अर्जुन मित्र है, सब कुछ है, भगवान का इतना नजदीक का उसका व्यवहार है। कभी ऐसा नहीं कि अर्जुन उसे पहले मूर्ता प्राप्त करना, ये तो ये 1.5 घंटे में ही उसको मूर्ता आई है, जब लड़ाई शुरू होने वाली है तब उसको मूर्ता आई है, सही ना। तो उसका सारा संबंध यूं देखे भगवान के साथ बात गहरे मित्र का था, हा? फिर भी भगवान को पहचानता नहीं है, फिर भी भगवान को पहचानता, क्योंकि ये जो संबंध है अंतरंग संबंध है, तो उसमें पहचान की कोई कामयाबी आती ही नहीं, पहचान की शक्ति भी नहीं है। भगवान को यथावत स्वीकारते हैं, ऐसा निर्दोष व्यवहार करते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में सगे संबंधियों इत्यादि पर जो लगाव था, तो लगाव के कारण वो चेतना दब गई, भगवान के साथ के विशुद्ध चेतना थी वो दब गई। यहाँ रख दो
माइक,
इट इज सिंपलीफाइंग। ओ माइक में, माइक पीछे
थोड़ा आगे लाओ उसको, बहुत पीछे
रखो। हरे कृष्णा सुनाई देता है,
थोड़ा अंदर रखो, बाहर मत रखो, यू होल्ड। ओके बट इफ ही कीप्स हियर ही दे कैन हियर, बस स्किप इट।
तो अर्जुन यू देखे तो बहुत क्वालिफाइड भक्त है, और जब भगवान की ये सारी महत्ता उसको अपनी आंखों से देखने का प्रश्न आया तो भगवान कहते कि ये तेरे आंखों के मर्यादा के बाहर, तेरी आंखों द्वारा तो मुझे नहीं देख सकेगा मेरा ऐश्वर्य, उसके लिए तो क्या कोई बड़ा दूरबीन चाहिए, नहीं। यहाँ दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु की बात कर रहे हैं भगवान, तो ये दिव्यता कैसे आएगी? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये सीक्वेंस है। चक्षुदान देखने की दृष्टि, हमारे चर्म चक्षु तो माँ बाप ने दिए हैं, लेकिन ये चक्षुदान फायदेमंद नहीं है, उसे भौतिक चीजें वो भी सीधी नहीं देख सकता, जब तक सूर्य का प्रकाश उस पर परावर्तित नहीं होता तो दिख नहीं सकता, ये साइंस भी कहता है। जब सूर्य को देखने की शक्यता इस चक्षु में नहीं है तो उसमें दिव्यता की जो दिव्यता का जो प्रकाश वो कैसे देख पाएगा, वो तो सब दूसरी वेवलेंथ पर है। तो यहाँ ये बताया कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, क्योंकि न सकनोषि, तो तेरे पास कोई कोई शक्ति नहीं है कि तू ये विराट रूप का भी दर्शन करे, तो चक्षुदान यानी दिव्य दृष्टि वाला चक्षु गुरु देते हैं। किस दृष्टि से देखना है, तो यहाँ भगवान ये पूर्ति करते हैं कि देखो गुरु कैसे चक्षु देते हैं। शास्त्र चक्षु, गुरु की जिम्मेदारी है शास्त्र चक्षु देना, तो आप उसका उपयोग करके देखोगे कि सही है कि नहीं। तो शास्त्र चक्षु, शास्त्र दिव्य होते हैं, तो साक्षर चक्षु से ज्ञान चक्षु पैदा होते हैं, तो शास्त्रीय ज्ञान हम यूनिवर्सिटी में पढ़कर हमारी कोई आंख कोई खोलता नहीं, वो तो उल्टी बंद करता है, ऐसा ज्ञान देते हैं कि हम इतने अंधे हो जाते हैं भौतिकता के पीछे पड़े रहते हैं तो हम अपनी औकात भी भूल जाते हैं। तो शास्त्र चक्षु गुरु देते हैं, देखने का तरीका बताते हैं अनुभूति द्वारा, तो वो दिव्य चक्षु होते हैं, राइट? तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और कहीं ये ज्ञान प्रकाश नहीं है तो सिर्फ हृदय में ही प्रकाश होता है। अभी हृदय के हैं तो ये अंदर उजाला हो गया है, ऐसा नहीं है प्रकाशित हो, यानी कौन सा हृदय की बात कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हृदय वास्तविक जगह है, एक इतने भारी 80 किलोग्राम का शरीर है उसका भी हृदय होता है, सही ना? तो आप हमारी जो वास्तविक स्थिति है आत्मा की, उसका भी तो कोई हृदय होगा ना। सचमुच व्यक्ति तो आत्मा है, ये शरीर तो जुटा है, जुटे शरीर के लिए भी हृदय रखा है और हृदय अति मर्म भाग कहलाता है। तो जब आत्मा जहां स्थित होती है उसको भी तो हृदय कहेंगे ना, जहां रहती है। अब आत्मा तो सर्वव्यापी है, सारे शरीर में व्याप्त है, कभी कभी शरीर के बाहर भी निकलती है और बुद्धि और अहंकार वाले शरीर को स्वप्न अवस्था में भी ले जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि आत्मा जिस स्थिति में है, स्थिति यानी जहां स्थ यानी रहना, तो स्थिति बताता है। ऐसा नहीं कि ये जिसकी स्थिति नहीं है ऐसा अस्थिर है, बहुत स्थित है। लेकिन निर्णयात्मक भाव आता है, निश्चयात्मक भाव आता है, तब उसको स्थिति अच्छी कहलाती। जब हम मन के चक्राव में चढ़कर इधर उधर घूमते रहते हैं तो वो स्थिति स्थिर नहीं है, अस्थिरता है, अस्थिरता कहलाती है। तो स्थिरता कहाँ है? एक जगह बैठा रहे करके बच्चे तो बैठ ही नहीं पाते, अस्थिर है। तो इंद्रियां बहुत विचलित करती हैं, अस्थिरता। तो अर्जुन की स्थिति यदि भगवान को देखने की होती तो वो स्थिरता वाली होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है, समाधिस्थस्य केशव स्थित दीन किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत के। चलने में भी स्थिति होती है, ऐसा नहीं कि क्या आत्मा एक जगह पड़ा है वहां से कहीं हट भी नहीं सकता, सर्वत्र गौ बला है, अचिंत्य सर्वत्र गौ है। तो सर्वत्र जाने वाले आत्मा की स्थिति है, लेकिन वो इसकी इच्छा पर रहती है। तो जब भगवान के बारे में आत्मा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे कड़े नियमों में जाना होता है, जिस द्वारा उसकी स्थिरता वाली स्थिति बताते हैं। इसलिए साधक हमेशा यदि विचलित मन वाला हो, अस्थिर मन वाला हो, तो उसकी साधना कमजोर ही कहलाती है। लेकिन ये क्षर प्रकृति का दर्शन है। क्षर प्रकृति यानी गिरने वाली, जो स्थिर नहीं है तो गिरता रहता है। लेकिन भगवान के प्रति की उसकी जो सारी ये गुरु साधु और शास्त्र द्वारा उसके दिमाग में जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो स्थिरता वाली बननी चाहिए, इसके अनुसार ही बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी इसका बहुत आग्रह करते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट बोलना है, जो गुरु बोले रिपीट करो, काम हो गए। हम तो रिपीट भी नहीं कर पाते, अस्थिरता है। तो स्थिरता वाली बुद्धि अक्षर प्रकृति कहलाती है, जो गिरने वाली ही नहीं है, नहीं तो ज्यादातर हम गिरते रहते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि उटस्थ अक्षर उच्यते। अक्षर स्थिति जो है ऐसे इनफॉलिबल स्टेट कहते हैं, तो वो अक्षर स्थिति आत्मा की साधना द्वारा प्राप्त होती है। निश्चयात्मक भाव, निष्ठा जब आती है तब कोई उसे डगा नहीं सकता। तो अर्जुन ये सारे उसका संबंध होते हुए भी भगवान ने इस आपत्तिकाल समय में उसे बुला दिया और उसको रगड़ में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रगड़ में हैं, इसलिए अर्जुन को एक निमित्त बनाकर भगवान सबको उपदेश दे रहे हैं कि तेरा मन पर भरोसा मत कर, तुझे अभ्यास तो होना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसाना, तो स्थिर स्थिति लाकर हमें भगवान की ओर अग्रसर रहना है। तो ये चक्षु भी हमें उधार देते हैं भगवान, हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन जब ये अक्षर स्थिति में आत्मा आगे बढ़ता है, अनुभूति के द्वार पर पहुंचता है, तो वो अपना अकेले होने का कोई उसे भाव नहीं होता, हमेशा भगवान उसके साथ है परमात्मा के रूप में, और ये इनके आत्मा के हृदय में समाये हुए हैं, ऐसा बताया। आप ब्रह्म संहिता देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब कहते हैं कि कौन सा श्लोक है, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमाञ्जनच्छ्रित भक्ति विलोचनेन, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमाम। कौन उसका अनुवाद करेगा? प्रेमाञ्जनच्छ्रित भक्ति विलोचनेन, भक्ति की आंख द्वारा, पर लेकिन ये भक्ति की आंख में क्या होना चाहिए? प्रेम का अंजन होना चाहिए। भक्ति यानी प्रेममयी सेवा, तो ऐसे भक्ति करने वाले भगवान को प्रेम से देखना चाहते हैं। हाँ, तो भक्ति विलोचन है ना, यहाँ ये विराट रूप का दर्शन कराते, वहां प्रेम नहीं है, इसलिए काम चलाओ, इसलिए एक बार देखने के बाद भी दूसरी बार देखने की झंकना नहीं होती ना हो तो ठीक है। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, ये जो भक्ति की आंख है उसमें प्रेम का अंजन डालना है, काजल डालते हैं ना, तो प्रेम का अंजन डालते हैं। तो संत जो साधु पुरुष पवित्र हुए हैं, सदैव हृदय विलोकन, तो ये कौन सा हृदय से देख रहे हैं? प्रेम की आंखों से देख रहे हैं, पर प्रेम की आंखों में जो जो सारी स्पंदना होती है और भगवान को देखने के लिए आत्मा तक वो दृष्टि पहुंचनी चाहिए। देखो हमारी दो आंख है, दो आंख तो वैसे तो उल्टा देखती है, पर क्रॉस बन जाता है नीचे अंदर तो सुल्टा देखने लगती, लेकिन देखने वाला तो मैं हूं, मैं ही देख सकता हूं, कोई कोई दूसरा कोई डिपार्टमेंट थोड़ा देखता है। तो आंखों के देखने पीछे व्यक्ति होता, जीवात्मा होती है, सुनने वाला भी जीवात्मा होता है, स्वाद लेने वाला भी जीवात्मा होता है, जीव अपने आप स्वाद नहीं देती, इसलिए आंख तो कैमरा है, वो स्वयं को देख नहीं पाती, देखने के लिए दृष्टि चाहिए, हाँ, और देखनार भी चाहिए, दृष्टा भी चाहिए। तो दृश्य यानी कि जो भगवान है उनका अनुभव होता है। तो यहां ये बताते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये ज्ञान चक्षु द्वारा दिव्यता के चक्षु, अनुभूति के चक्षु प्रकट होते हैं। अनुभव होना आवश्यक है, सिर्फ हम थियोरिटिकल मान ले और प्रैक्टिकली अनुभूति नहीं करें तो फायदा क्या है? ये साइंस है। तो अनुभूति करना बहुत आवश्यक है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तू ये आंखों से देख नहीं पाए, तू देखेगा सही लेकिन इन आंखों से नहीं देख पाएगा, इसलिए तेरी आंखों में शास्त्र के ज्ञान चक्षु द्वारा जो ज्ञान चक्षु, हाँ शास्त्र चक्षु द्वारा ज्ञान चक्षु मिलता है, तो ज्ञान चक्षु द्वारा तो देखने का प्रयत्न कर। तब भगवान एक ही स्थिति में इतना भयानक दृश्य उनका बता देते हैं जिसे विराट रूप कहते हैं। ये विराट रूप हर एक को एक प्रकार की अनुभूति नहीं कराता, दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया था, तो ये तो उल्टा चिढ़ गया भगवान पे, हे कृष्ण तेरी जादूगरी बंद कर, मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। भगवान उसे समझाने गए थे कि भैया तू पांच गांव तो दे दे पांडवों को, नहीं दूंगा। तू नहीं देगा तो तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं करके भगवान ने विराट रूप दिखा दिया उसको, तो वो तो सामने चढ़ गया, कह अरे कृष्णा तेरे जैसे जादूगरी तो हमने बहुत देखी है। उसने सैनिक को बुलाया, हे आ जाओ इसको जेल में डालो। तब भगवान के तू मुझे क्या जेल में डालता, मेरा मामा नहीं डाल सका तो तू जाएगा। तो भगवान चले गए, तो उसने भी देखा तो वो विराट रूप था, लेकिन उसने अलग, उसका भाव ही अलग है दुश्मनी जैसा, तो ईर्ष्यालु ऐसे देखता है। तो लेकिन यहाँ एक ही स्थल पर भगवान के एक ही व्यक्तित्व में सब कुछ देख सके ऐसा दिखाना अर्जुन को दिया कि तू जो चाहे वो देख सकता है। तो साथ साथ में मेरा ये स्वरूप भी देख ले काल का जो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो वो देखकर घबरा जाता है, अर्जुन के छक्के छूट जाते हैं क्योंकि भगवान आप कौन हो, आपके आपका क्या इरादा है, क्योंकि सब कौरव के पक्ष में बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि भगवान के प्रज्वलित मुख में घुस रहे हैं और कई सैनिक चबा रहे हैं, ऐसा भयानक दृश्य देखकर अर्जुन की हड्डियां कंपने लगती हैं। कुरुक्षेत्र में प्रेम की बात नहीं होती, भक्त और भगवान के बीच में कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रेम की बात नहीं होती ऐसा हम मानते हैं, लेकिन भगवान ने प्रेम के वश ही तो इस आपत्ति समय में अर्जुन को 1.5 घंटे भगवद गीता कही, प्रेम के वश की। तो भगवान का प्रेम समझने में तो प्रेम वाली ही आंखों, अंजन वाली आंखों हमें देखना चाहिए, सही ना? लड़ाई के समय में कौन प्रेम है? भगवान प्रेम करते हैं वो भी नहीं देख पाते, क्योंकि इतना गहरा देहात्म भान होता है तब हमारी परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए देह से पवित्र लेकिन आत्मा से देह को भी दूर अलग करने की बात कर रहे हैं। देह में पड़ा रहे उसका कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आत्मा अपनी पवित्रता भगवान के अंश और भगवान का नाता वाली बात नहीं भूलता, तो यह अनुभूति में तभी तो प्रेम कर सकता है कि किसी भी हालत में हो तो भगवान का प्रेम देख पाएगा। तो ये शास्त्र चक्षु से ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से दिव्य चक्षु, ये प्रकट होने चाहिए भगवान के दर्शन के लिए। तो जब तक हमारे ये भौतिकता के पडल दूर नहीं होते, सत्वगुण में स्थिर रहकर भगवान का नाम जप नहीं करते, तो हमें भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होते, जब भगवान का नाम जब भगवान की सेवा, भगवान के दिव्य गुण और भगवान के दिव्य लीला समझकर ही तो हम अपने सारे संशयों को मिटाकर सब प्रकार की ग्रंथियां हृदय में पड़ी हैं अज्ञानता की, उसको भी तोड़कर हम भौतिक जगत में रहते हुए भी जो काम कर रहे हैं वो बंधनकर्ता भी न बने, ऐसी हालत में ही हम भगवान को साक्षात दर्शन कर पाते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ति सर्व संशया, क्षीयन्ते चाश्च कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। तब एवात्म ईश्वर खुद को भी और ईश्वर जो कंट्रोलर है, तो वो कहते हैं कि आत्मा के हृदय में परमात्मा छुपा है। वैसे तो परमात्मा सर्वत्र है, तो क्या आत्मा में नहीं होना चाहिए? आत्मा एक इकाई है, तो हर एक इकाई को टिकाने वाले परमात्मा बताए, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चित कण हो या अचित कण हो। तो ये सर्वविदित सत्य के रूप में बाहर निकलता है। भगवान को भौतिक स्वरूप देखने के लिए भी इतनी झंझट में अर्जुन को डारा, तो इनका मूल रूप प्रकट कैसे होगा? वो इसी अध्याय में अंत में जब ये सारा देखकर भगवान से जानकारी प्राप्त करके अर्जुन की बुद्धि ठिकाने आई, तब कहते कि अभी तो मैं परेशान हूँ, ये रूप को बंद करो, भगवान आपका ओरिजिनल बताओ। तब भगवान ने चतुर्भुज बता दिया, सहस्त्र भुज विश्व रूप छोड़ के चार भुजा वाले बताए। अर्जुन के मेरा संबंध इसके साथ भी नहीं है। तो द्विभुज सौम्य वपुम बता। तो भगवान का ऐसे कितने ग्रेडेशन में जाना पड़ता है कि जब उनका सौम्य वपुम द्विभुज स्वरूप के साथ हम भगवान के साथ अंतरंग व्यवहार कर सके। तो यहाँ जो दशम स्कंद का जो उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि इत्थम सतानाम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो ब्रह्म सुख के लिए ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग तपश्चर्या करते हैं, साधु पुरुष इत्थम सतानाम ब्रह्म सुखानुभूत्या। ये भी दूसरा भी बताते हैं, दूसरी कैटेगरी किसकी है? तो दास्यम गतानाम परदैवतेन, जो लोग देवताओं की पूजा के पीछे पड़े भौतिक भोगों के लिए, इन लोगों की भी दूसरी श्रेणियां बताई है। तीसरा कौन है कि मायाश्रितानाम नरदारकेन, जो मायावादी है, माया को आश्रित रहे हैं और सब निपुट अज्ञानता रखते हैं भगवान के, ये सब ये कैसे जान पाएंगे कि ये गोप बालक जो भगवान के साथ खेल रहे हैं, तो इन्होंने अनेक अनेक जन्मों के पुण्य के संचय इकट्ठे किए होंगे, तभी तो और वो लोग जानते नहीं कि भगवान की ये परम सत्ता क्या है। अर्जुन ने तो अभी अभी तक परम सत्ता के बारे में ही प्रश्न किया था कि विराट रूप में आप सब कुछ हो, तो परम सत्ता कहलाती है। तो ओपुलेंस यानी कि ऐश्वर्य, लेकिन अभी तक प्रेम की भावना, परम प्रेम का लेवल नहीं आया है, जो गोपियों के व्यवहार में ही प्राप्त होता है। तो अर्जुन एक मित्र के रूप में भगवान के साथ व्यवहार कर रहा है। पहले प्रेम का ही तो था, लेकिन ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में गुरु और शिष्य यहाँ ऐसा प्रेम नहीं बता सकते, वहां तो डांटी खानी पड़ती है। तो कृष्ण भगवान ने उसे पहले ही डांट मारने शुरू कर दिया है। तो बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि या दृष्टि जो है कैसे पवित्र बनेगी, दिव्यता कैसे लाएगी। तो ये क्रमानुसार अपने जीवन में उतारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना श्री प्रभुपाद ने की है, और हरेक को ये प्रयोग में एक ही ढंग से उतारा जाता है। आपके लिए कोई नया नहीं है, आपके लिए कोई दूसरा करेंगे ना, सबके लिए एक प्रकार की जो पद्धति है, क्योंकि भगवान यहाँ किसी भी जात भेदभाव नहीं करते। हाँ, अपने अपने पूर्व जन्म में हम जितने भक्तोन्मुखी सुकृति की है तो वो हमारा विकास के स्तर पर ला सकती है, लेकिन जब ये सुकृतियाँ इस जन्म में हम पूरे पूरा उसका उपयोग कर लें, तो भगवान की पहचान करना, भगवान जैसे बताते हैं उस तरह, यानी कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, अब बाद में ये पहचान करके इनके स्वरूप की पहचान करना है। पहले पर्सनालिटी की पहचान आती है, बाद में व्यक्तित्व की पहचान आती है, उसके बाद भगवान के अंतरंग गुणों की पहचान आती है, और उसके बाद भगवान की लीलाओं की पहचान। नहीं तो हम कच्ची मिट्टी के पुतले हैं, तो वैसे के वैसे ही जाएंगे। तो जरा अच्छे एक मनुष्य जन्म में भगवत भक्ति अपना कर हम पक्के मिट्टी वाले बर्तन बन जाए। जब पक्के मिट्टी वाले बर्तन अच्छी तरह से आवाज करते हैं, पता है, कच्ची मिट्टी वाले बर्तन बोलते ही नहीं, वो टूट जाते हैं। साउथ इंडिया में तो ये पक्की मिट्टी के बर्तन को बाजा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, उसमें क्या घटम बोलते हैं। तो इस तरह भक्ति का विकास में ये सारी स्टेज बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम शास्त्र चक्षु द्वारा ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु द्वारा दिव्य चक्षु। दीक्षा के समय ये दिव्यता प्रकट होनी चाहिए। दीक्षा के समय गुरु भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं शिष्यों का, जो दीक्षार्थी। ये संबंध जोड़ना तादृश कब होगा, कब फ्रुक्टिफाई होगा, हम ये इस स्तर के जो विस्तार पूर्वक बताएं, क्रमानुसार धीरे धीरे भी, लेकिन डिटेल में है ये स्टेप्स हमें आगे बढ़ाने चाहिए। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में सूचन किया है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो इनका और विवेचन किया है माधुर्य कादंबरी में। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। प्रेमांजन छुरित तो प्रेम अंत में आता है, तब तक रगड़ में रहना पड़ता है। तो किसी को कोई प्रश्न है?
बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने क्लास दिया, वो भी बहुत सारे अलग अलग संदर्भ दे के बहुत अच्छी तरह से समझाया,
लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है
थोड़ा सा। यस महाराज, मेरे दो छोटे से प्रश्न है। एक तो ये कि जो भगवान के अंतरंग भक्त होते हैं वो हमेशा अंतरंग रहते हैं या कोई भक्त प्रोग्रेस करके भगवान का अंतरंग बन सकता है?
नहीं, अंतरंग बनने के लिए बहिरंग अवस्था उसकी आवश्यकता है ही, लेकिन ऐसे अंतरंग भक्त भगवान के हित के लिए हमारे समक्ष आ सकते हैं। क्या प्रभुपाद जी को अंतरंग भक्त कहोगे या साधना भक्त कहोगे?
अंतरंग
हमारे हित के लिए आते हैं। तो चैतन्य रे संगी संगे नित्य सिद्ध करी माने ये जाए ब्रजेंद्र सुत पास। यदि हमारा लक्ष्य भगवान भगवत प्राप्ति में वो कृष्ण भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रज के राजा नंद महाराज के बेटे हैं, तो इनके पास यदि जो जाना है तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके साथ सभी नित्य संगी आए हैं और नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्धि इस तरह एक भक्ति की विशुद्ध स्थिति है जो हमेशा भगवान के अवतारों के साथ आती रहती है। चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए और सिर्फ पंचतत्व में नहीं आए, इन सब को भी लेकर आए हैं। तो एक ही लक्ष्य और हरे कृष्ण आंदोलन में तो एक ही लक्ष्य है कि ब्रजेंद्र नंदन की उपासना, और वो भी कि इसके अनुसरण में गोपियों ने जैसा करा। तो इस तरह सारा जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्रेम, तो धीरे धीरे विकास करके आगे बढ़कर करना है।
छोटा सा और प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि जो तीसरी आंख के बारे में आपने बात की तो शिव जी के है, देवी के है, और आपने गणेश जी का भी नाम लिया, और फिर ब्रह्मा जी जीव तत्व है, तो
हाँ,
तो ये भी जो तत्व होते हैं महाराज, ये भी अपना एक पहला से ग्रेडेशन रहता है कि मतलब जैसे कोई प्रोग्रेस भी करता है।
सर्वप्रथम परम सत्य तो परम तत्व, तत्व यानी सत्य, जो सत्य वास्तविक होता है वो तत्व के रूप में समझाता है। तो वास्तविकता कृष्ण भगवान के बारे में है, विष्णु तत्व के बारे में है, शिव तत्व के भी बारे में है, और शक्ति तत्व के भी बारे में है, जीव तत्व के भी बारे में है। तो ये सब सनातन अवस्था वाले तत्व, जीव तत्व सनातन, शक्ति तत्व भी सनातन, विभाग हो सकते हैं अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति पर, लेकिन शक्ति तत्व तो परम सत्य है ही। तो परम सत्य के ये सब का आधार भगवान जो परम सत्य है इन पर रहता है। भौतिक दुनिया में वही सत्य परावर्तित रूप में हमें आनुषंगिक सत्य कहना है, रिलेटिव ट्रुथ के रूप में आता है, और रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन टू कृष्ण। हम तो वो तो समझते ही नहीं, हम ये सब का हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड यानी फुलिश सेंटर्ड बन जाते हैं, सारी जिंदगी हम लोग गंवा देते हैं इसके पीछे। कितने जन्म गंवाए होंगे। तो यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते होए कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। तो ये बहुत स्पष्ट बात है, तो हमें इस तरह उसके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्रमानुसार बढ़ते जाओ तो उसमें जो अनुभूति निहित है जुड़ी हुई है वो धीरे धीरे सब बाहर आएगी, वो भक्ति की प्रगति है। और
हमने ऐसा समझा है छात्रों द्वारा कि जीव की इच्छा भगवान से अलग भोग करने की जब होती है तब जीव को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, उसे भौतिक विश्व में आना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब वो शरीर बदलता है तो वो जीव की इच्छा के अनुसार होगा या मन द्वारा?
जीव कर्म बंधन कर्मणा दैव नेत्रेण जंतो देह उत्पत्ति, ये सारी मैनेजमेंट भगवान ने बना रखी है हाँ, कि उसी प्रकार हर एक जीव का काम होता रहता है हाँ, तो जैसी इच्छा है वैसे कर्म सही है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए ही तो गया है और सारा भौतिक जगत एक दृष्टि से देखो जीव की इच्छा पूर्ण करने के लिए दिया, लेकिन उसमें भी बेवकूफ बनते हैं हाँ। ये जगत जब अगाध समुद्र है और दुखों का भरा है हाँ, अज्ञानता का समुद्र देखो, दुखों का समुद्र देखो हाँ, तो ये अति घोर उसमें एक बार गिरे हो बाहर निकलने की संभावना कितनी कम होती है, होती ही नहीं। फिर भी देखो कर्म के हिसाब से ही ऐसा भगवान ने आयोजन बना रखा है और उसमें सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है तो ये यदि हम अपने चरित्र में विकास करते रहे तो अवश्य पार कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ कहा कि ये हाँ हिंदुइस्टिक फिलोसफी जो बन गई है ने तो उसमें ये सिखाया जाता है। हम तो पुनरावर्तन में मानते हैं, यानी कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता ही रहता है होता ही रहता है, इसका मतलब क्या है कि उसका अंत नहीं आता, वो नहीं सिखाएंगे। वी बिलीव इन रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म में मानते हैं और भगवान तो कहते भाई बंद करने हैं, कब 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 आएगा तुम्हारी बात सही ना। माम उपेक्त्य तु पुनर्जन्म न विद्यते, तो वो कौन कर सकता है हाँ? तो इसलिए दैव योग से ऐसा हमें प्रयोग करने को मिलता है और वो भी कौन कितना सीरियस ले सके कब होगा तो सब ऊपर वाले की नजर में है कौन कौन फिल्टर हो जाएगा पर फिर भी इस जो पद्धति में आगे बढ़ने में किसी भी क्षय नहीं है, किसी का विनाश नहीं होता, वो जितनी अमानत हमने बचा रखी है वो उसका कभी दुरुपयोग भी नहीं भविष्य में होगा, वो सब एकत्र होता रहेगा। सत्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन न अपको पतित तो यदि कुवा भद्र अभूत अमुष्यकेन वो पार्थो आप तो अभजताम स्वधर्म, भजने वाले यानी कि भगवान को भजने वाले हैं हाँ। तो भगवान को भजने वाले हमेशा भगवान की शरण में रहने का प्रयत्न करते हैं और जितनी ली वो परमानेंट एसेट बन जाती है इन लोगों की हाँ, उसका क्षय होता नहीं, भक्ति का कभी क्षय नहीं होता, वृद्धि ही हो सकती है हाँ। यानी कि थोड़ी भक्ति करके कोई चला गया चलो हाँ, तो दूसरी बार दूसरा मौका जहाँ से बंद उसकी हुई है वहाँ से पुनः चालू हो जाएगी, ऐसे नहीं कि के जीरो से रगड़ करनी है हाँ। इस तरह हम थोड़ा सा भी हम इस जगत में थोड़ी प्रगति के पंथ पर चले तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, बड़े बड़े भय से भी हम बच जाएंगे, और भय है फिर से भवसागर में डूब गया मालना। और
कृष्ण लीला करते तब गोपी के साथ लीला करते हैं, वो गुप्त रहते भगवान है, लेकिन जब कृष्ण के साथ
पहले कृष्ण भगवान की लीला अपनी इंद्रियों के साथ होती है, गो यानी इंद्रियां, गोपी तो बाद में आएगी, इनको पहले मतलब गो यानी इंद्रियां। हाँ, तो इंद्रियों के साथ भगवान कैसे लीला करते हैं? आप हरे कृष्णा महामंत्र करो, माला हाथ में लो, 108 गोपियां होगी उसकी भावना रखते हैं। हाँ, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
अभी देखो कि पांच पांच इंद्रियों के साथ भगवान का नाम चल रहा है कि नहीं, पांच पांच इंद्रियां माला घुमाने में आ रही है कि नहीं, सेवा कर रही है कि नहीं, वो देखो ये लीला है। ये लीला का दर्शन करे बिना सीधे जंगल में गोपियों की लीला देखने कैसे, यही लीला है। गो यानी इंद्रिया, ऋषि के न ऋषि के सम सेवनम भक्ति रुच्यते, ऋषि यानी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है। ये इंद्रियां जानकारी के लिए है, उपभोग करने के लिए नहीं है। तो जो जिसका उपयोग भगवान की जानकारी के लिए है, खुद की जानकारी के लिए है, तो वो भगवान के साथ अंतरंग में जुड़नी चाहिए। तो ये भगवान की लीला हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करने में ही पता चल जाएगा। पांच पांच इंद्रियां को कैसे लगाओगे काम में, बताओ अभी। माला करते हो ना तो पांच इंद्रियां सेवा में लगती है कि नहीं? आप पांच पांच इंद्रियां का ख्याल रखोगे, ये पांच पांच इंद्रियां पांच खिड़की बराबर है, कोई खुली नहीं रहनी चाहिए, मन अंदर कैद में रहेगा। हाँ, नहीं तो मन भाग जाएगा, किसी भी खिड़कियां ओपन हुई। हाँ, जीभ स्वादेंद्रिया भी है, और भगवान का नाम रखने करने के लिए तो कार्य है उसके, कान की इंद्रियां भी सुनने के लिए आवश्यक है। नाक का क्या काम है, जब माला करते हैं तो नाक का क्या है? नाक तो सुनता है, जो तुलसी तुलसी की माला होगी, अंदर भगवान के चढ़ाए हुए फूल होंगे, तो नाक पर भी लगाते, तो नाक पर भी क्यों नहीं लगाते, लगाते हैं नाक पर माला, आँख पर एक एक माला खत्म हो जाती है, आँख पर लगा दे, नाक पर भी लगाना चाहिए। तो स्पर्शेंद्रियां काम में आएगी, और कौन बाकी रही? आँख, ये आँख का क्या काम? हम तो माला करते तो आँख बंद कर देते हैं, किसने कहा आँख बंद कर माला करना? खबरदार जो आंख बंद कर दी तो सो जाओगे। आंख का काम है एक महामंत्र एक ही मन के पर चलना चाहिए, यदि आंख देखना बंद करे कि देखो तीन चार निकल जाएंगे। तो ये सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान भगवान के नाम जप में तो लगाओ। हाँ, ये गोपियां हैं, इनको इनको पहले शुद्ध करो, बाद में असली गोपियों के पास जाओगे। हमने तो सारी जिंदगी रगड़ करके पांच पांच इंद्रियों का तो दुरुपयोग किया, इसलिए मन भी भागा जा रहा है। लेकिन ये कर्तव्य है इंद्रियों का, ये कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, और पांच विषय इंद्रियों के विषय। ये 15 तत्व उसके साथ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार 23 तत्व उसमें जीव को डाला है। ये भगवान ने प्रथम सर्ग किया है, बाद में ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं। द ब्रह्मा इज नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर। और हम भी इसमें दखलगिरी करते हैं, देवताओं भी दखलगिरी करते हैं और अपनी अपनी प्रकृति बनाते हैं। और चौथा मनुष्य, तो हमारा तो चौथा नंबर है। क्रिएटर एक है, हम रिक्रिएटर है सब। रिक्रिएट करते हैं, मनुष्य को यह शक्ति दी है, इतनी खोज करते हैं, लेकिन बड़ाई की बात नहीं कर सकता। हो बंडा फूट जाता है उसका, असली क्रिएटर तो भगवान ही रहेंगे। यू आर वेरी क्रिएटिव इन द स्कूल, टीचर्स आर हैप्पी विथ अवर किड्स, दे आर वेरी क्रिएटिव। क्या करेंगे क्रिएटिव में, पेंटिंग करते हैं, देन
क्राफ्टिंग करते हैं,
क्रिएटिव। जूनियर हाई में तो तुम्हें तो कहीं प्रोजेक्ट देते हैं ना, कुछ क्रिएट करना, ऐसा कोई प्ले कार्ड बनाओ, उस पर कहीं प्रोसेस लिखो, क्रिएटिविटी। मनुष्य में क्रिएटिविटी आई कहाँ से भाई, ये सब उधार धंधा। वी बोरोड फ्रॉम द देवतास, देवतास बोरोड फ्रॉम ब्रह्मा, एंड ब्रह्मा बोरोड फ्रॉम कृष्ण। इसी तरह सब ग्रेजुअल आया है। वी आर नॉट द ओरिजिन ऑफ एनीथिंग, वी आर प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स। इसीलिए हम लोग भोक्ता भी नहीं बन सकते, हम उपभोक्ता कहलाते हैं, सेकेंडरी एंजॉयर्स। कृष्ण भगवान भोक्ता रम्यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वां शान्तिं ऋच्छति। हो गया, इस तरह भक्त तो हमेशा शांति पाता है अपने आप को। आप भोक्ता को मारो गोली, उपभोक्ता को भी मारो गोली। हम तो तृणादपि सुनिचे न, भोक्ता भी नहीं कुछ, एक तिनके के समान होते हैं। तब अहंकार उछल आता है। अरे हमने तो कुल में ये पढ़ा था, वी आर समबडी, चैतन्य महाप्रभु यू आर ए नोबडी। समबड़ी बनते बनते नोबड़ी कैसे हो जाते हैं, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट, बट दैट इज द रियलिटी। ओनली इन दैट स्टेट ऑफ नोबडीनेस वी विल अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ द सुप्रीम बॉडी। दैट्स यू थिंक योरसेल्फ समबड़ी। She didn't look at me. Good.
Killing sign.
Intelligent, very intelligent boy. Jai Shri Prabhupada ki.
Jai. His Holiness Veda Vyasa Priya Swami Maharaj ki.
Jai.
So, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की अनुकंपा से परम सौभाग्य है कि हमारे को महाराज जी का संग लाभ प्राप्त हुआ है। भी गौरव प्रभु ने महाराज का इंट्रोडक्शन दिया था, महाराज अभी 75 बरस के हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत ट्रैवल करते हैं महाराज, और यहाँ पर आके उन्होंने हमको अपना संग दिया है, तो महाराज का धन्यवाद देते हैं। और महाराज के धन्यवाद में महाराज मैं एक भागवत का श्लोक कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भागवत में आता है कि ये जो ग्रेट फिलंथ्रॉपिक सोल होते हैं ये क्यों इस धरती पे घूमते हैं, तो अनुग्रहाय इह चरन तीनूनम, वो कहते हैं भूतानी भव्यानी जनार्दनस्य, कि हम लोग जो भगवान से विमुख हो गए हैं उन लोगों को वापस भगवान के पास लाने के लिए ये जो भगवत भक्त होते हैं बड़े वो घूमते रहते हैं पृथ्वी पे अपने चरणों से और हर एक जगह को जाके तीर्थी कुरुवंती तीर्थाणी, उसको तीर्थ बनाते हैं। तो महाराज यहाँ पर भी आके और इस मिडल ईस्ट के अंदर घूम रहे हैं, उसको तीर्थ बना रहे हैं, तो हम बहुत कृतज्ञ हैं महाराज के और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके स्वास्थ्य को और ठीक रखे ताकि कई और वर्षों तक महाराज इसी तरह घूमते रहें और बहुत सारे लोगों को भगवत भक्ति में लगाते रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
आपने हमारे दिल की बात कह दी। देखो कब तक भगवान घुमाते रहते हैं, संसार के चक्र में भी तो घूमते ही रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द डॉग रन्स ऑन फोर लेग्स एंड मैन ऑल्सो रन्स इन द मोटर कार, व्हाट्स द डिफरेंस। ऐसी बात है, हम भी तो घूम रहे हैं, हवा में घूम रहे हैं,
पर आप उद्धार करने के लिए घूम रहे हैं।
तो जितना होगा वो होगा, हम कहाँ नाप दंड करते हैं।
थैंक यू। तो अभी सभी से निवेदन है कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट प्रसादम। तो पहले माता जी और जो ग्रस्त डिवोटी जिनको लेट हो रहा है आप प्लीज आके और महाराज से प्रसाद ग्रहण कीजिए और सब डिवोटीज के लिए फिर पीछे प्रसाद है, आप पैक प्रसाद लेके जा सकते हैं। His Holiness महाराज की जय, प्रभुपाद की जय। किसका मोबाइल है? चिन्मय प्रभु का। चिन्मय प्रभु का।